आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम है नियति और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की इंग्लिश किताब से एक बहुत ही सुंदर कविता जिसका नाम है विंड। ये पोयम शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो पोयम है ना वो ओरिजिनली लिखी गई थी तमिल लैंग्वेज में, जो कि साउथ इंडियन लैंग्वेज है, और इसका ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में। तो इसका मोस्ट ऑफ द इसके जो वर्ड्स है ना वो राइमिंग नहीं है एक दूसरे के साथ। ओके, सो हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी ये पोयम नहीं में, फर्स्ट मैं आपको ये पोयम पढ़ के सुनाऊंगी, उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड्स है जो हमें नहीं समझ में आए, उसके बाद हम समरी देखेंगे पोयम की, और उसके बाद स्टैंडा बाय स्टैंडा मैं आपको लाइन बाय लाइन पोयम एक्सप्लेन करूंगी, एंड आफ्टर दैट हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी जो क्वेश्चन है इसके वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। द विंड। The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? Wind comes softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You're very clever at poking fun at weaklings. Frail crumbling houses. Crumbling drawers, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So, come, let's bring strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. ये कविता लिखी गई हुई है सुब्रमण्य भारती ने तमिल भाषा में। ओके, तो देखते हैं इस पोयम की समरी पहले हम, उसके बाद लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द समरी। तो एज द नेम सजेस्ट, दिस पोयम इज अबाउट द विंड। हाउएवर, विंड इज अ नेचुरल फिनोमिनॉन, यानी कि हवा का आना एक बहुत ही नेचुरल फिनोमिनॉन है, और ये पोयम जो है ना बच्चों वो डिस्क्राइब करती है पावर ऑफ द विंड, मतलब हवा की जो पावर है ना उसको डिस्क्राइब करती है, और कहती है कि हवा बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसके साथ साथ ही डिस्ट्रक्टिव भी है, मतलब कि कुछ भी तबाह करने की हवा ताकत रखती है अपने आप में, अगर बहुत ही बड़ा हवा का झोंका आए तो। मतलब हम कह सकते हैं कि इसको चक्रवात भी कहते हैं ना हिंदी में हम लोग, है ना। तो आगे चल के जो हमारे पोएट हैं, जो हमारी कवियत्री हैं, वो क्या करती हैं, वो कंपेयर करती है हमारे लाइफ में आने वाली डिफिकल्टीज के साथ, है ना। तो हर हर इंसान के लाइफ में कोई ना कोई डिफिकल्टी तो जरूर होती है, तो पोएट क्या कर रहे हैं, इस हवा को उसके साथ लिंक कर रहे हैं, इसके साथ जोड़ के देख रहे हैं, है ना। तो पोएट कहते हैं कि ये जो हवा है, बहुत ज्यादा हवा का जो झोंका आता है वो वीक जो लोग हैं, मतलब कमजोर लोगों को बहुत जल्दी अफेक्ट करता है, पर जो स्ट्रांग लोग होते हैं ना, मतलब कि जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर फर्क पड़ा भी तो वो लोग वापस से खड़े हो जाते हैं उस विंड के अगेंस्ट, मेंटली वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। लोगों को बच्चों विंड जो है वो कुछ ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाती, मतलब कि जो डिफिकल्टीज है लाइफ में वो ऐसे लोगों का कुछ पाल भी बाका उन लोगों का नहीं कर सकती, पर जो वीक लोग होते हैं, मतलब कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि पेपर या फिर विंडो, ये जो लोग होते हैं ना बच्चों बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, यानी कि वीक पर्सन क्रम्बल्स एंड ब्रेक डाउन लाइक एन ओल्ड बिल्डिंग, मतलब कि जो वीक लोग होते हैं वो जैसी पुरानी जो आपकी बिल्डिंग्स होती हैं वो जैसे गिर जाती हैं, उसी तरह से वीक लोग जो होते हैं ना वो गिर जाते हैं थोड़ी सी भी डिफिकल्टी आने के साथ, है ना। So it is necessary that we should make this destructive force our friends with our determination and strength. यानी कि हमारे लाइफ में जो डिफिकल्टीज आ रही है ना बच्चों, तो उनके अगेंस्ट हमने स्ट्रांगली खड़ा होना चाहिए, सो दैट हम अपने उनके साथ हमने फ्रेंडशिप करनी चाहिए, सो दैट हमारे डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ की वजह से, ताकि वो हमारा कुछ भी बात नहीं कर सके। ओके, ये तो हो गई समरी। अब हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन या फिर स्टैंड बाय स्टैंजा बाय स्टैंजा हम लोग समझेंगे कि ये पोयम का एक्चुअली मतलब क्या है। ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा हम पढ़ते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रेव देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. मतलब कि ये है, और एक यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है, डिफिकल्ट वर्ड्स, उनका मतलब भी बताऊंगी. पोकिंग फन का मतलब है किसी का मजाक उड़ाना, और वीकलिंग का मतलब है जो इंसान वो जो बहुत ही वीक होता है. WEAKLING. ओके, सो द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द विंड. पोएट जो है वो हवा के बारे में बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं हवा को कि बहुत ज्यादा सॉफ्टली आओ तुम. एंड ही इज सेइंग दैट विंड शुड नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग लाउड. मतलब कि बहुत ज्यादा तेज नहीं आनी चाहिए विंड, ने बहुत ज्यादा आवाज करती हुई नहीं आनी चाहिए. इट शुड बी सॉफ्ट एंड सटल. यहाँ पे आपको एक न्यू वर्ड पढ़ने को मिल रहा है, सर्टल, SUBTLE. और यहाँ पे प्रोनाउंस आप कैसे करेंगे, सर्टल. यहाँ पे जो बी जो है ना बच्चों, वो साइलेंट रहेगा. ओके, SUBTLE. इसका मतलब है ऐसी चीज जो बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत ही हल्की होती है, और या फिर उसको डिस्क्राइब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. इसका मतलब है, इसका क्या वर्ड है, कौन सा वर्ड है इसके लिए, सर्टल. ओके, तो देन ही सेज दैट द विंड इज वेरी पावरफुल एंड इट इज डिस्ट्रक्टिव. लेखक ये कह रहे हैं कि विंड बहुत ही ज्यादा जो हवा है वो पावरफुल है और डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने की अपने आप में ताकत रखती है वो. और इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ विंडोज एंड स्कैटर्स द पेपर, यानी कि जो आपकी खिड़की है, खिड़कियों के कांच जो है वो तोड़ने की भी क्षमता रखती है, और तोड़ देती है विंड अगर बहुत जोर से चले तो. और पेपर, और पेपर्स जो हैं, जो लूज पेपर जो जिसको आप टेबल पे रखते हैं, उसको भी इधर उधर फैलाने की भी ताकत है हवा को, है ना. मतलब ऑल इन ऑल सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की ताकत है विंड में, हवा में. तो व्हेन द विंड इज वेरी पावरफुल ऑल द बुक्स विच आर केप्ट ऑन द शेल्फ दे फॉल डाउन. मतलब कि शेल्फ, आपकी अलमारी में जो ओपन अलमारियां जो होती है जिसको हम शेल्फ कहते हैं, तो विंड उतनी पावर रखती है कि वो सारे किताबों की भी वो नीचे गिराए, है ना. तो सो हियर द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द पावर ऑफ द विंड. इस पोयम में जो कवि है वो विंड की पावर डिस्क्राइब कर रहे हैं. ओके, सो देन ही सेज टू द विंड, लुक एट द डिस्ट्रक्शन दैट यू हैड डन. मतलब पोएट कह रहे हैं कि देखो तुमने कितना ज्यादा नुकसान किया है लोगों का, कितना ज्यादा तुमने डिस्ट्रॉय किए हैं बहुत सारी चीजें. व्हेनेवर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड, ऑल थिंग्स दैट आर वीक लाइक स्मॉल प्लांट्स, टाइनी चिल्ड्रन एक्सेट्रा, दे ऑल गेट स्कैटर्ड स्कैर्ड एंड दे कैन इवन फॉल एंड गेट हर्ट. यानी कि पोएट कह रहे हैं कि तुम जब हवा, तुम जब इतनी जोर से जब चलती हो, तो छोटे बच्चे जो होते हैं या फिर छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे बुशेस होते हैं, वो जड़ से उखड़ जाते हैं. आप देख सकते हैं कि जब ऐसे जिस चक्रवात जब आता है, तो अच्छे अच्छे जो गार्डन्स होते हैं, बहुत बहुत खूबसूरत जो गार्डन होते हैं जहाँ पे अच्छे अच्छे फूल नाजुक से खिले होते हैं, वो भी बिखर के मतलब तबाह हो जाते हैं. तो पोएट कह रहे हैं कि तुम आ रही हो तो जरा धीरे से आना, सब लोगों को डरा के उनको डिस्ट्रॉय करके मत आना, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम मत आना. ओके, सो वी कैन से दैट इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द पोयम द पोएट इज रेफरिंग टू द विंड एज यंग चाइल्ड. पोएट कह रहे हैं, हमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विंड है वो बहुत ही छोटे बच्चों की तरह नादानियां करती है. ओके, ही इज सेइंग दैट इट शुड कम सॉफ्टली जस्ट लाइक स्मॉल चाइल्ड डज. कि जैसे कि हम जब छोटे होते थे तब हम अपने पैरों, मतलब हम धीरे धीरे चलते थे, है ना, हम बहुत ज्यादा तेज दौड़ भाग नहीं कर सकते थे. तो पोएट कह रहे हैं कि तुम वैसे ही बच्चों की तरह नाजुक तरह से चल के आना, बहुत ही इनोसेंटली हम लोगों के पास आना. वी कम टू नो दैट द विंड इज डिस्ट्रक्टिव जस्ट लाइक अ यूथ, जस्ट लाइक अ यंग बॉय और यंग गर्ल हु इज फुल ऑफ एनर्जी, वॉयलेंस एंड डिस्ट्रक्शन. पर जैसे जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं, हम हमारे टीनेज में आते हैं, तब हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और तब हम क्या करते हैं, हम बहुत तेजी से दौड़ भागते हैं, और हम में भी उतनी ही पावर होती है विंड जैसी, कि हम सब कुछ तबाह करने की भी ताकत रखते हैं अपने आप में, है ना. तो चलते हैं आगे. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. क्रम्बलिंग जो यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्ड यूज किया है गया है बच्चों, CRUMBLING. हम इंग्लिश टू इंग्लिश अगर इसका ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है फॉलिंग और टू कॉज समथिंग ब्रेक. मतलब कि किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना या फिर तबाह करना, है ना। और रेफ्टर, RAFTER का मतलब है अ स्लोपिंग बीम विच सपोर्ट्स द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, है ना। आप देख सकते हो अपने बिल्डिंग, मतलब आपकी जो स्कूल स्कूल बिल्डिंग है, अगर उसके ऊपर अगर वुड का जो है रूफ है, तो स्लोपिंग एक बीम होगा, मतलब एक बहुत बड़ी सी स्लोपिंग, मतलब टेढ़ी करी हुई एक बीम होगी, उसको कहते हैं रेफ्टर, जो कि सपोर्ट करती है पूरे बिल्डिंग को, पूरे बिल्डिंग के छत को। ओके, सो हियर द वर्ड क्रम्बलिंग इज रिपीटेड सो मेनी टाइम्स टू ले स्ट्रेस दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स इन द फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। यहाँ पे क्रम्बलिंग वर्ड बार बार इस्तेमाल किया गया हुआ है ये शो करने के लिए कि विंड है जो वो ताकत रखती है इतनी सारी चीजें तबाह करने का, इतनी सारी चीजें डिस्ट्रॉय करने का, यानी कि क्रम्बलिंग हाउसेस मतलब घर तबाह करने में, क्रम्बलिंग डोर्स यानी कि डोर जो है मतलब आपका दरवाजा उसको तबाह करने में, क्रम्बलिंग रेफ्टर्स यानी कि जो कि स्ट्रॉन्ग बीम होती है जो पूरे रूम को सपोर्ट, पूरे रूम के जो रूफ टॉप है उसको सपोर्ट करने की भी जो विंड ताकत रखती है उसको भी तबाह करने की विंड ताकत रखती है ना। क्रम्बलिंग बॉडीज यानी कि इंसानों की बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स यानी कि इंसान की जो जान है उसको भी तबाह करने की ताकत रखती है, और क्रम्बलिंग हार्ट्स। क्रम्बलिंग हार्ट्स का क्या मतलब है कि जब हमारे जो बहुत ही करीबी लोग हैं जब वो हमसे दूर जाते हैं तब हमारा हार्ट भी क्रम्बल होता है, मतलब हम भी अंदर से, हमें बहुत ज्यादा दुख होता है, हमें दर्द पहुंचता है, तो क्रम्बलिंग हार्ट्स यानी कि हमारे भी जो हार्ट है उसको डिस्ट्रॉय करते करते विंड चली जाती है ना, सब कुछ मतलब खत्म करके। सो इसलिए उन्होंने क्रम्बलिंग वर्ड पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है। सो द राइटर इज सेइंग दैट व्हेन द विंड इज वेरी पावरफुल इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इट लीड्स टू ब्रेकेज ऑफ एवरीथिंग, मतलब कि विंड जो है हवा वो जब बहुत ज्यादा तेज चलती है तब वो इतनी ज्यादा पावर रखती है कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करे, है ना। हाउसेस विच आर वीक फॉल डोर्स, हाउसेस विच आर वीक दे फॉल, डोर्स विच आर वीक दे फॉल, बीम्स ऑन द रूफ दे ऑल्सो फॉल टू विच बिल्डिंग्स आर सपोर्टेड, है ना। तो विडन स्ट्रक्चर जो होता है जो बीम की वजह से टिका हुआ होता है वो भी गिर जाता है। ओके, सो ऑल बॉडीज ऑफ पीपल फॉल, एनिमल लाइव्स हार्ट सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो ही इज सेइंग दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स, मतलब राइटर कह रहे हैं कि पोएट हमारे की सब कुछ क्रम्बल करते करते विंड चली जा रही है अभी। सो एवरीथिंग दैट इज वीक रिएक्ट्स बाय फॉलिंग डाउन एंड ब्रेकिंग इन द फेस एडवर्सिटी, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। तो क्या होता है कि जो जो भी कुछ चीजें वीक होती है जैसे कि छोटे प्लांट्स या फिर छोटे छोटे कच्चे घर, तो वो तबाह हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको एक इडियम है, मतलब आपको एक प्रोवर्ब है, फेस ऑफ एडवर्सिटी, है ना। एडवर्सिटी का मतलब है बच्चों ए, मतलब मैं आपको स्पेलिंग बताती हूँ, ADVERSITY, AD फॉर डॉग। ओके, सो ADVERSITY एडवर्सिटी, इसका मतलब है अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन, यानी कि वो सिचुएशन जो हमें नहीं चाहिए होता है, जो सिचुएशन के आने के बाद हमें बहुत कष्ट होते हैं, यानी कि हार्डशिप्स आप कह सकते हो, है ना, मतलब आपको ट्रॉमा यानी कि आपको तकलीफ होती है, वैसे वाले सिचुएशंस। ओके, तो ऐसे वाले सिचुएशंस आ जाते हैं कब, जब हमारे जो वीक लोग हैं, जब हम दिल से हम लोग उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, वो चीजें जब गिर जाती हैं वैसी, तो हम लोग बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, हमें हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा केओस मच जाता है ना, उथल पुथल हो जाती है। सो द पोएट इज सेइंग दैट व्हेन एवर अ वीक पर्सन फेसेस एन एडवर्सिटी और चैलेंज इन लाइफ ही ब्रेक्स डाउन एंड फॉल्स, मतलब कि जैसे कि मैंने कहा आपको कि विंड को यहाँ पे लेखक ने क्या किया है कि एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से कंपेयर किया है, और लेखक हमें ये कह रहे हैं, हमारे पोएट हमें ये कह रहे हैं कवि कि वीक लोग भी ऐसे ही होते हैं, जब उनके लाइफ में कोई स्ट्रेस वाला सिचुएशन आता है ना तो वो ऐसे गिर के बिखर जाते हैं। ओके, सो द विंड गॉड नोज एंड क्रशेस देम ऑल, है ना। तो पोएट कह रहे हैं कि जैसे जब एडवर्सिटी, जैसे कि डिफिकल्ट सिचुएशन जब आते हैं, तो विंड जो होती है वो एक उसी के साथ कंपेयर किया गया हुआ है, और वीक लोग गिर जाते हैं, वो गिर के बिखर जाते हैं, है ना। यहाँ पे एक और लाइन है, मैं एक ही लाइन का आपको मतलब समझाती हूँ बच्चों। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, यहाँ पे विनोइंग का मतलब क्या है, आपने अपने साइंस किताब में पढ़ा होगा, विनोइंग का मतलब है, और हमारे यहाँ पे आपके बुक में भी है, देखो दो औरतें हैं, उन्होंने अपने हाथ में वो ग्रेन्स क्लीन करी है विंड के सहारे, मतलब विंड का, हवा का झोंका जब आएगा तो उनकी जो ग्रेन्स है, राइस जो है, पेड़ी जो उन्होंने लाया है फील्ड में से, उसमें से जो चीजें हैं, मतलब अनवांटेड चीजें जो है वो साफ हो जाती हैं। तो विनोइंग का क्या मतलब है, टू ब्रेक ग्रेन फ्री फ्रॉम चैफ, सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट, मतलब कि हवा की मदद से उनमें से जो अनवांटेड पार्टिकल जो है वो निकालना। ओके, सो द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, यानी कि मतलब है पोएट यहाँ पे किसको एड्रेस कर रहे हैं, विंड गॉड यानी कि हवा की देवता को, वायु देवता को, और वो कह रहे हैं कि हवा के जो देवता है वायु देव, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और वो क्या करते हैं, ही शिफ्ट्स ऑल द पीपल एंड दोज पीपल हु आर वीक एंड फॉल डाउन एंड गेट क्रश्ड, सो हियर द कंपेरिजन इज मेड बिटवीन द वीट एंड पीपल, सो जस्ट लाइक वी विनो द वीट टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द चैफ, द विंड गॉड सेपरेट स्ट्रॉन्ग पीपल फ्रॉम द वीक पीपल, व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड ऑल थिंग्स आर वीक फॉल एंड गेट क्रश्ड, यानी कि हम देख सकते हैं कि हम जब विनोइंग करते हैं, मतलब कि जब हम विंड में से, पैड़ी में से अच्छी पैड़ी जो है, अच्छी जो फसल है वो जब हम क्लीन करते हैं विंड के सहारे, तो जो अनवांटेड चीजें हैं वो दूर चली जाती हैं, और अनवांटेड चीजों से लेखक का ये मतलब है, हमारे पोएट का, कि जो वीक लोग होते हैं वो, है ना, तो वो वीक लोग दूर हो जाते हैं इसी वजह से, और क्या होता है, जो अच्छी जो वीट है, मतलब जो स्ट्रांग लोग हैं वो ही बस सरवाइव कर पाते हैं ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में, है ना, सो व्हेन देयर इज अ स्ट्रांग विंड ऑल थिंग्स दैट आर वीक दे फॉल एंड गेट क्रश्ड, मतलब वो लोग फिर क्रश हो जाते हैं, बिखर जाते हैं जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन आते हैं। तो चलते हैं आगे, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, यानी कि राइटर कह रहे हैं, हाँ जी हाँ, यहाँ पे एक डिफिकल्ट वर्ड है स्टेडफास्ट, इसका मतलब है फर्म, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ना किसी चीज को, है ना, तो पोएट वॉन्ट्स अस टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड दैट इज द एडवर्सिटीज इन आर लाइफ, पोएट कह रहे हैं हमें कि आप लोगों के लाइफ में जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है ना, तब आप उनके साथ फ्रेंड्स बनिए, मतलब कि क्या है, उसको उस सिचुएशन को डर डर के मत रहिएगा, जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन आते हैं उनको फेस कीजिए। ओके, सो ही सेज दैट द प्रॉब्लम विल नॉट लिसन टू अस, दे विल कम, सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड, मतलब कि हमारी जो डिफिकल्टीज हैं वो हमारे पास नहीं, हमारी बातें नहीं सुनेंगी। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देती हूँ, मान के चलिए आपकी परीक्षा है, अभी आपकी मैथ्स की परीक्षा है या फिर आपकी हिस्ट्री की, चलो आपकी परीक्षा है, आपको लग रहा है कि पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, तो आप क्या करते हैं, हमको जब वो सब्जेक्ट नहीं पसंद आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम उस सब्जेक्ट के किताब को हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते, हम लोग देखना भी पसंद नहीं करते, और फिर क्या होता है, जब भी हमारी एग्जाम आती है तो ऑल ऑफ अ सडन हमें याद आता है, अरे मुझे तो पढ़ना था, तो हम लोग फिर वापस से उस किताब के पास चले जाते हैं, पर होता क्या है, क्योंकि साल भर में हमने वो किताब को हाथ भी नहीं लगाया होता है, तो हमको वो और ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, और ये एक विशियस साइकिल बन जाती है, मतलब कभी भी ना खत्म होने वाली एक साइकिल, एक चेन सी बन जाती है, कि आपको किताब नहीं पसंद इसलिए आप उसे टच नहीं कर रहे, और आप टच नहीं कर रहे इसलिए आपको वो समझ नहीं आ रही है, वो उसका जो कंसेप्ट है, और आपको समझ नहीं आ रहा कंसेप्ट, इसलिए आपको वो किताब को हाथ भी लगाना फिर से मंजूर नहीं है, है ना, आपको वो सब्जेक्ट ठीक मंजूर नहीं है, आपको पसंद नहीं है वो सब्जेक्ट, तो ये एक विशियस साइकिल सी बन जाती है। तो हमें पोएट क्या कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो अपने प्रॉब्लम्स को फेस कीजिएगा, यानी कि इस मान के चलिए कि आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट पसंद नहीं है, आपको इतिहास सब्जेक्ट, तो आप क्या करेंगे कि आप अच्छे से पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट को, आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुझे क्यों हिस्ट्री पसंद नहीं है, ऐसा क्या है हिस्ट्री में जो पसंद होने लायक ना हो, है ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि अरे हिस्ट्री तो इतना ज्यादा इजी सब्जेक्ट है, वो बस उसके ईयर और ये सब अगर हम रिवाइज कर ले, बार बार से बाय हार्ट कर ले, तो उतना भी इजी नहीं है, हिस्ट्री मतलब उसमें भी एक कहानी है, उसमें भी एक स्टोरी है, और जब हम वो चीज पढ़ेंगे तब हमको हमारे पास्ट के बहुत सारी चीजों का अंदाजा आएगा, और फिर क्या होगा कि हमें वो फिर से, हमें वो सब्जेक्ट जो है वो पसंद आने लगेगा। जैसे कि मैं आपको और एक एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ, मान के चलिए आपको साइकिल चलाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, आपको साइकिल चलाने में आपको लगता है कि अरे मैं तो ये कभी नहीं चला पाऊंगी या फिर मैं कभी नहीं चला पाऊंगा, तो आपको क्या करना है, आपको अपने भाई के ऊपर आपके डिफिकल्ट जो आपके मतलब वो चीजें हैं जो आपको करने में भय लगता है, आप जब उन चीजों को फेस करेंगे तब आप में वो हिम्मत आ जाएगी कि अरे ये तो मैं इजिली कर सकता हूँ या फिर मैं इजिली कर सकती हूँ। डर डर के अगर आप रहोगे किसी भी सिचुएशन को, या फिर आप वीक बन के जब रहोगे तो वो जो सिचुएशन है वो आप पे हावी हो जाती है ना, और हमको इजिली ब्रेक डाउन करने में उस चीज को फिर और कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है। तो पोएट हमें क्या कह रहे हैं कि आपके लाइफ में जब भी कोई डिफिकल्टी आए तो आप इतने ज्यादा स्ट्रांग बनिए कि आप उस जो डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर पाए, आप उसके साथ फ्रेंडशिप बनाए रखिए, है ना, कि बाद में फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। सो ही सेज दैट द प्रॉब्लम्स विल नॉट लिसन टू अस, आपकी जो प्रॉब्लम्स वो आपके बारे आपको नहीं सुनेंगी, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही है। सो दे विल कम, सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड, इन प्रिपरेशन वी शुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग होम्स एंड क्लोज द डोर ऑफ आर हाउस फर्मली सो दैट विंड कैन नॉट गेट इन टू इट। एंड देन ही सेज दैट वी शुड ऑल्सो मेक आर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ट फर्म टू फेस दीज चैलेंजेस, एंड देन वंस वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू ऑल द चैलेंजेस वी विल बी लाइक फ्रेंड्स, वी विल नॉट फील दैट दे आर ट्रबलसम। मतलब कि पोएट कह रहे हैं यहाँ पे, जब भी हम डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे सामने आती है तब हमने क्या करना चाहिए, हमने अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए। यहाँ पे अपने आप को स्ट्रांग बनाने का मेटाफर जो है वो पोएट ने कौन सा यूज किया है कि हमने अपने घर स्ट्रांग बनाने चाहिए। तो पोएट का ये मतलब है यहाँ पे कि ना ही घर बल्कि हमें खुद को भी उतना स्ट्रांग बनाना है कि भले ही कोई भी सिचुएशन क्यों ना आए मैं उसको फेस करने की हिम्मत रखता हूं या फिर हिम्मत रखती हूँ। ओके, सो द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रांग फायर रोर्स एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। मतलब कि पोएट कह रहे हैं यहाँ पे एक डिफिकल्ट वर्ड है बच्चों, फ्लरिश, जिसका मतलब है ग्रो, या फिर आप कह सकते हो हिंदी में पनपना, किसी भी चीज का ग्रो होना। प्लांट्स जैसे छोटी सी बीज होता है वो पनपता है ना उस एक पौधे के रूप से, तो उसको कहते हैं फ्लरिश। ओके, सो द पोएट हैज केप्ट द वीन ऑन पेडेस्टल, ही इज कमिंग, ही इज कंपेयरिंग द विंड टू गॉड, ही सेज दैट विंड इज गॉड एंड वी मस्ट प्रेज द विंड एवरी डे, ही एड्स दैट एवरीथिंग इज वीक गेट्स फिनिश्ड ऑफ इन फेस ऑफ स्ट्रांग विंड एंड ऑल द थिंग्स दैट आर स्ट्रांग फ्लरिश एंड ग्रो टू बिकम स्ट्रांगर। ही इज गिविंग अस वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट वी शुड नॉट फील बैड दैट वी आर फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस एंड एडवर्सिटीज इन लाइफ, वी शुड नॉट फील बैड अबाउट ऑल दिस चैलेंजेस एंड वी शुड मेक आर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली टू फेस दिस चैलेंजेस, एंड वंस वी आर स्ट्रांग इनफ वी विल ओवरकम द चैलेंजेस, वी विल बिकम फ्रेंड्स विद देम एंड देन वी विल बी हैप्पी दैट वी हैड दिस चैलेंजेस इन आर लाइफ बिकॉज दे हेल्प अस बिकम स्ट्रांगर एंड बेटर। तो यानी कि पोएट हमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि जब हम खुद को स्ट्रांग बनाएंगे, जब हम खुद को इतनी खुद में इतनी अहमियत रखेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आए मैं उसको फेस करूंगा या फिर करूंगी, तब हमें जो विंड है वो हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, मतलब जो विंड है वो अगर छोटी सी फायर हो तो उसको बुझा बुझा देती है विंड, अगर बहुत ज्यादा तेज चले तो, है ना। पर जो बहुत बड़ी फायर होती है जिसमें मतलब हम चिंगारी जिसको कहते हैं, जो काम मतलब खुद में काबिलियत रखती है कि वो बहुत बड़ी फायर हो जाए, तो जो विंड है उसको भी कन्वर्ट कर सकती है एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्टिव फायर में, है ना। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी भी सिचुएशन का सामना कैसे करते हैं, हम किसी भी सिचुएशन को चुनौतियों जैसा नहीं देख के उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका जो कंक्लूजन है इस पोएट पोएम का, तो वो क्या होगा, इस पोएम का कंक्लूजन होगा कि जो हम जब वीक बनते हैं ना, द पोएम गिव्स अस वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट वी शुड नॉट फील बैड दैट वी आर फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स इन लाइफ। मतलब कि हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, हार्डशिप्स आते हैं, उसको हम बुरा उसके लिए फील नहीं करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट हमने क्या करना चाहिए, हमने खुद को इतना मेंटली और फिजिकली काबिल बनाना है कि हम लोग उन चैलेंजेस को फेस कर सके। मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बस आपके परीक्षा का एग्जाम्पल दिया था, बट हो सकता है आपके लाइफ में और भी कोई डिफिकल्टीज आ रही होंगी, जैसे कि सपोज आपके लाइफ आपके घर में कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, तो भी आपने मेक श्योर करना चाहिए कि आपके जो गोल्स है अपने लाइफ के, यानी कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, मुझे कोई तो मतलब एक बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन अचीव करनी है, तो वो आप उसमें से, आपके उस ड्रीम से आप कभी पीछे नहीं आपने हटना चाहिए। भले ही कितनी ही डिफिकल्टीज आए, आपने अपने आप में ये हिम्मत रखनी चाहिए कि नो, आई विल ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड आई विल फेस दीज चैलेंजेस। ओके, तो हम यहाँ पे एक बहुत इजी इजी सवाल दिए गए हैं कुछ 6-7, तो हम उसको एक क्विकली सॉल्व करते हैं उस सवालों को, ठीक है? और फिर आप अपने नोटबुक में वो सारे के सारे सवाल जॉट डाउन कीजिए। ओके, सारे सवाल और उनके जवाब भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द थिंग्स दैट विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा? इसका जवाब है, द विंड ब्रेक्स द डोर्स ऑफ द विंडो, स्कैटर्स द पेपर्स एंड थ्रोस डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, इट ऑल्सो टेयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स एंड ब्रिंग्स रेन। यानी कि जो विंड है, जो हवा का झोंका है, वो अपने आप में इतनी ताकत रखती है कि विंडो पेन जो है कांच के उसको भी तोड़ सके, पेपर्स जो फैले हुए, पेपर्स जो रखे गए हुए नॉर्मली उसको भी फैला सके, और बुक जो रखे हैं, जो इतने देर से बुक अच्छे से शेल्फ में पड़े थे, अलमारी में थे, उनको भी नीचे गिरा सके, है ना? और तो और विंड में इतनी भी ताकत है कि वो रेन को भी ला सके। रेन से यहाँ पे पोएट का मतलब है कि और ज्यादा डिफिकल्टीज हमारे लाइफ में, एक डिफिकल्टी जब आती है तो एक ही डिफिकल्टी से हम नहीं, मतलब वो लाइफ नहीं स्टॉप हो जाता, और डिफिकल्टीज आती हैं। तो यहाँ पे रेन यानी कि बारिश का जो कंपैरिजन है वो और डिफिकल्टी के साथ कंपेयर किया गया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम और इन पेडी फील्ड? व्हाट इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग? व्हाट डू पीपल यूज फॉर विनोइंग? यानी कि आपको ये सवाल किया गया हुआ है कि क्या आपने ऐसे जो विनोइंग के जो काम है, यानी कि आप अपने बुक में एग्जाम्पल के तौर पे वो पिक्चर दे सकते हैं जो दो औरतें कर रही हैं। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा गया हुआ है कि आपने ऐसे किसी को करते हुए देखा है या नहीं। ओके, तो जो विनोइंग जो वर्ड है उसका मतलब आपको हिंदी में अगर हम देखें, सर्च करें डिक्शनरी में, तो उसका मतलब आता है फटकना। ओके, और जो चीज जो यूज करते हैं हम, तो उसको कहते हैं सूप। ओके, तो हिंदी में बरसाना भी कहते हैं हम लोग। ओके, सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज? तो इसका जवाब है, द विंड गॉड विनोज ऑल द थिंग्स अवेलेबल एट होम। मतलब कि जो विंड गॉड है, मतलब जो वायु देवता है, वो सारी की सारी चीजें विनो करते हैं जो घर में अवेलेबल हो। ओके, हाउ डज वी मेक विंड आ फ्रेंड? तो हम लोग विंड को, यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशंस को, अपना फ्रेंड्स कैसे बनाएं? तो पोएट सजेस्ट दैट वी शुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग होम्स एंड फिक्स डोर्स फर्मली टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। मोर ओवर वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनाफ टू फेस द डिफिकल्टीज इन लाइफ। मतलब कि हमें, हम किसी भी प्रॉब्लम के साथ फ्रेंडशिप तब करेंगे जब हम उस प्रॉब्लम को, अपने आप को ज्यादा उस तरह से अफेक्ट होने नहीं देंगे, और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ फ्रेंडशिप कर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ पोयम मीन टू यू? तो लास्ट 4 लाइन जो है पोयम की, इस कविता की, वो कहते हैं, इट कन्वेज द मैसेज दैट दोज हु आर नॉट डिटरमाइंड एंड लैक कॉन्फिडेंस फेस डिफीट, एंड दोज हु सेट देयर टारगेट्स एंड मेक सिंसियर एफर्ट्स आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाय एनी ऑब्स्टिकल्स। यानी कि जो जो लोग अपने आप में हिम्मत रखते हैं किसी भी सिचुएशन को फेस करने की, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टी हैं, वो लोग जब हार जाते हैं तो उनको भी ये जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा से ज्यादा अफेक्ट करेंगी, है ना? जो लोग वीक होते हैं उनके लाइफ में और ज्यादा डिफिकल्टी लाएगी, और जो स्ट्रांग होते हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। ओके, उनको कोई अफेक्ट नहीं होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड इन एंगर और इन ह्यूमर? यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइफ, वॉट इज योर रिस्पॉन्स टू दिस? इज इट सेम एज द पोएट? तो यहाँ पे हमें ये सवाल है कि पोएट जो है उन्होंने मजाक की तरीके से कहा है विंड के साथ वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, या फिर गुस्से से, है ना? तो द पोएट स्पीक्स टू द विंड विथ ह्यूमर, यानी कि वो मजाकिया तरीके से ही बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स के साथ, यानी विंड के साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पोएट का जो बिहेवियर है ना, वो बहुत ही सटल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में उन्होंने इसको पोर्ट्रे किया है। एंड आई हैव ऑल्सो सीन विंड डिवास्टेटिंग द प्रॉपर्टी मर्सीलेसली, यानी कि बहुत ही बिल्कुल भी मर्सी ना होते हुए, बिल्कुल भी दया ना दिखाते हुए मैंने भी देखा है विंड, यानी कि जो प्रॉब्लम्स है वो लोगों की जिंदगियां कैसे उजाड़ देता है। सो द पोएट इनवाइट्स द विंड टू अटैक हिम एंड इंटेंट्स टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द अटैक, यानी कि पोएट जो है वो विंड को कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूं अभी, और तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मुझे ब्रेक करने की, मैं ब्रेक नहीं होऊंगा। ओके बच्चों, इसी के साथ ही हम ये क्लास फिनिश कर लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग इन टू दिस क्लास। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।